بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک شہر میں درزی کی دکان تھی اور اس درزی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کا کسٹمر کتنی ہی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے وہ کپڑا پھر بھی چوری کر ہی لیتا ہے. تو اس کی شہرت خاصی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. درزی اپنے کام کا ماہر تھا اسے لوگ اس کے پاس جانے کے لیے مجبور تھے. تو ایک ترک نے اس درزی کی شہرت سنی, اس شہر میں آ گیا جہاں وہ درزی تھا اور وہاں آ کے بھی ان لوگوں سے اس نے ویریفائی کیا جو اس درزی کے کسٹمرز تھے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ درزی ہر حال میں کسٹمر کا کپڑا چوری کر لیتا ہے. ترک کو اپنی عقل مندی اور سمجھداری پر ناز تھا. اور اس کو یہ یقین تھا کہ درزی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس نے اس شہر میں اپنے جاننے والوں سے کہا کہ مجھ سے شرط لگا لو, وہ درزی میرا کپڑا چوری نہیں کر پائے گا. تو یوں اس نے ترک نے شرط لگا لی کہ اگر تو درزی میرا کپڑا چوری کر پایا تو یہ میرا عربی گھوڑا جس پر میں سواری کرتا ہوں یہ تمہارا ہو جائے گا, اور اگر وہ درزی میری کپڑے کو چوری نہ کر سکا تو پھر تمہیں اپنا گھوڑا مجھے دینا ہوگا. شرط لگ گئی. درزی نے استنبول کا اطلس جو ان دنوں بہت مشہور تھا وہ کپڑا لیا, اس کا تھان, اور لے کے درزی کی دکان پہ چلا گیا اپنے اس جاننے والے کے ساتھ اور اس سے کہا کہ میری قبا سی دو اس سے. تو درزی نے کپڑا دیکھا کہ یہ تو استنبول کا بہت ہی مشہور اطلس ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, سل جائے گی. اب اس کی ناپ لے لیا اس نے. تو درزی جب ناپ لے رہا تھا اس وقت سے وہ ترک بہت ہوشیار تھا, دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ چوری کرے گا. تو جب اس نے کپڑا کھولا اور اس کی کٹنگ کرنے لگا تو بھی ترک بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تو درزی نے کپڑے کی کٹنگ کرتے کرتے ترک سے پوچھا کہ کہاں سے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میرا تعلق ترکی سے ہے, کس شہر سے ہیں, کہ استنبول سے. تو یوں اس نے بات چیت اس سے شروع کی اور کٹنگ کرتا رہا. تو باتیں کرتے کرتے درزی نے اسے ایک بڑا پرلطف لطیفہ سنایا. تو اس لطیفے کو سن کے ترک ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا پیٹ پکڑ کے. تو جو ہی ترک نے پیٹ پکڑا اور دوہرا ہوا درزی نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس تھان میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کو اپنی میز کے نیچے پھینک دیا. تو لطیفے سناتا رہا, کپڑا کاٹتا رہا, وہ غائب کرتا رہا. آخر پہ اتنا سا تھان بچ گیا کہ اس کی قبا بمشکل سلتی تھی. تو درزی نے سوچا کہ اب بہت ہو گئی تو اس کی قبا سی دی جائے. تو اس نے قبا سی تو خاصی تنگ تھی, اس لیے کپڑا تو چوری ہو گیا تھا. تو یوں وہ ترک اپنی شرط ہار گیا. اور شرط ہارنے کے بعد کپڑے کا ایک بڑا حصہ بھی گیا. قبا جو سلوائی مزدوری دے کے, وہ بھی تنگ سلی, کسی کام کی نہ رہی. اور اس کا عربی گھوڑا جو بہت قیمتی تھا, وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اس کے. مولانا روم کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح سے اس ترک نے ہنسی ہنسی میں اپنا یہ سارا نقصان کرا لیا, تو ہم لوگ جب زندگی کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں تو پھر اس ترک کی طرح ہم بھی نقصان میں چلے جاتے ہیں. کہ رب تعالیٰ نے تو ہمیں روحانی اطلس سے نوازا ہے, اور جب ہم زندگی کو ہنسی مذاق کے طور پہ لیتے ہیں تو اس روحانی اطلس کو اسی طرح گنواتے ہیں جیسے اس ترک نے اطلسی کپڑا گنوا دیا تھا. اگر ہم زندگی کو سیریسلی لیتے رہیں تو یہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں روحانی اطلس کی پوشاک پہنائی ہے, یہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے. ہم زندگی میں ایک رویہ تو یہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز من جانب اللہ ہے اور انسان تو مجبور ہے, تو میری تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ میں چوری کروں اور جیل چلا جاؤں. تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کچھ لوگ جبر و قدر کو قطعی طور پر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں, جو کچھ ہے انسان کی اپنی محنت ہے, جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پھل پاتا ہے, اور جس سمت میں محنت کرتا ہے اسی سمت میں وہ آگے بڑھتا ہے. بات در حقیقت یہ دونوں طرح ہی کی غلط ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, وہ اس حد تک تو درست کہتے ہیں کہ مالک رب تعالیٰ ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ محنت کو اور صبر کو بہت پسند کرتا ہے. جو انسان محنت کرتا ہے اور نتائج کا انتظار صبر سے کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اس کی محنت سے کئی گنا بڑھا کر پھل دیتا ہے, اور بہت اچھا پھل دیتا ہے. ایک تو محنت کا پھل ہے اور دوسرا صبر کا پھل ہے اس کا. جو لوگ قرب الہی के की तलाश में रहते हैं और उस राह में वो मेहनत भी करते हैं और सब्र से काम भी लेते हैं, तो उन्हें अल्लाह की दोस्ती जरूर मिलती है। ये जो मैंने अर्ज किया कि रब तआला मालिक है, ऐसा मालिक कि जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे सो करे उसको कोई पूछेगा नहीं, ये दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात भूल जाते हैं कि वो ऐसा मालिक है जो बड़ा रहीम और करीम है। दुनियावी मामलात में, दुनियावी जिंदगी में हमारे लिए रब रहमान है कि जब वो देता है तो ये तशखीस नहीं करता कि कौन उसका फरमाबरदार, कौन उसका चाहने वाला। और कौन उसके इताअत करने वाला, बल्कि वो सबको खुले हाथ से अता फरमाता है। लेकिन कयामत के रोज वो रहीम होगा, वहां जो वो लोगों से मामला करेगा वहां ये देखा जाएगा कि कौन उसका चाहने वाला था, कौन उसका फरमाबरदार था, कौन उसका इताअत गुजार था, कौन उसको पूजने वाला था। वहां वो रहीम होगा, लेकिन दुनिया में वो रहमान है। तो ऐसा मालिक जो रहमान है, बेपनाह, मेहरबान और बेपनाह, सखी है, तो ऐसे मालिक से हम ये गुमान क्यों कर रख सकते हैं कि वो कभी हमारा बुरा चाहेगा, वो हमारा भला ही चाहेगा। तो अगर कोई तकलीफ या दुख या दिक्कत जिंदगी में आती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, रात के बाद तलू होने वाला दिन उतना ही उजला होता है। तो अगर किसी वक्त हमें तकलीफ आई है तो उस तकलीफ के गुजर जाने के बाद जो राहत हमें अता फरमाएगा रब ताला, वो राहत फिर उसी निस्बत से कमाल की होगी जिस निस्बत से हमने वो दिक्कत उठाई है। किसी साहब ने पूछा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना कैसा है। एक मारूफ मजहबी स्कॉलर के मुताबिक यह आज के लोगों की मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमारा नफ्स चीजों को ड्रामेटाइज करता है, सूरतें बनाता है, कैरेक्टर्स तख्लीक करता है। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और इस ज़िम्न में जो हदीस पेश की जाती है इसका वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं। उन स्कॉलर के मुताबिक अल्लाह और शैतान हमारा नफ्स एक ही मीडियम इस्तेमाल करते हैं, चनाचे ये एक मिसकंसेप्शन है। यह आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ख्वाब में हमारा नफ्स चीजों को ड्रामेटाइज करता है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और इसकी कंसेप्ट इसकी एक्सेप्शन मौजूद है, इस मिसकंसेप्शन की एक्सेप्शन मौजूद है। जो ख्वाब हमारा नफ्स हमें दिखाता है, शैतान दिखाता है, वो होते हैं, लेकिन शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, वो एक्सेप्शन है, वहां जाके उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक का ताल्लुक आ जाएगा। वो ख्वाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत है, उसमें शैतान नहीं हो सकता, वो एक एक्सेप्शन मौजूद है। इसी तरह ये जो मैंने अर्ज किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता, तो आपने अपनी अपनी जिंदगी में भी सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज ख्वाब आपने देखे और वो सच्चे निकले। हर आदमी हम में से एक्सपीरियंस करता है। जो लोग नेक होते हैं उनके ख्वाब अक्सर बेशतर सच्चे होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, से मुराद मेरी ये है कि हम जहां शैतान के दिखाए हुए ख्वाब देखते हैं वहां रहमान के दिखाए हुए भी ख्वाब देखते हैं। और खुद आपने अपने सवाल में ये जो फरमाया है कि एक ही मीडियम को यूज करता है रहमान भी और शैतान भी है, तो फिर ये एक्सेप्शन तो खुद आपने लिख दी कि हमेशा शैतान ही नहीं ख्वाब दिखाता, रहमान भी दिखाता है। अगला सवाल इन्होंने किया कि क्या अगर कोई बच्चा ऐसा ख्वाब देखे तो उसे हकीकत मानना चाहिए या ये उस बच्चे की नफ्सियात को जाहिर करता है। मैंने अभी अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक तक ये बात पूरे यकीन से कही जानी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज्यारत करे, बच्चा हो या बड़ा, वो ख्वाब हकीकी है, शैतान ने नहीं दिखाया। ये एक सवाल है कि रात के तीसरे पहर अल्लाह को पुकारने का बेहतरीन अंदाज क्या है। बड़ी सादा सी बात है कि नवाफिल और कुरान पाक की तलावत ये बेहतरीन चीज है। तलावत इतनी आवाज में हम करें कि उसको हम खुद सुन सकें और कलाम पाक पढ़ते हुए जहन हमारा इधर उधर न भटके, उसका आसान सा एक तरीका है कि हम कुरान की तलावत इतनी आवाज में करें कि हम उसको खुद सुन सकें और हम अपनी तलावत को खुद बहुत गौर से सुने कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जब हम अपनी आवाज को खुद गौर से सुनेंगे तो हमारे अंदर वो यकसुई पैदा होगी और हमारा जहन उधर इधर उधर नहीं भटकेगा। तो नवाफिल और कुरान पाक की तलावत ये बेहतरीन इबादत है उस तीसरे पहर के लिए। इन्हीं साहब ने अगला सवाल पूछा है कि क्या कोई तरीका है कि शब के तीसरे पहर अल्लाह को हमारा पुकारना ऐसा मामूल बन जाए जिसमें कभी नागा ना हो। इसका आसान तरीन तरीका यह है कि हम जिस कमरे में सोए हैं अपने बेड से फासले पर अलार्म रख दें अगर इस कोने में बेड बिछा है तो कमरे के फॉर एंड पर जो कॉर्नर है वहां हम अलार्म क्लॉक रख दें, जब वो अलार्म बोलेगा तो हमें मजबूरन उठ के जाके उसे बंद करना होगा। तो एक बार जब हमने बिस्तर छोड़ दिया तो फिर उठना कोई इतना मुहाल नहीं रहता, तो इस तरह नागा नहीं होगा। इन्हीं का अगला सवाल है कि क्या हर वर्ष अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर की इजाजत होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में फरिश्ता भी बगैर इजाजत नहीं जा पाता, वहां भी फरिश्ते को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मरहमत फरमाएंगे तो ही वो हाजिर हो पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं, तो बेचारा वली अल्लाह क्या बेचता है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वली अल्लाह को उनके मुरीदों के बारे में भी हिदायत फरमाते हैं? ऐसा नहीं है, मास्वाय कहीं कोई एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के हो जाएं, अदरवाइज। ये सवाल है कि क्या दुआ घर का सिस्टम और दीगर मामलात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मॉनिटर करते हैं? भाई कौन से दुआ घर की ये तो बता दें आप। ये अगला इनका सवाल है कि रूहानियत में बादशाह सलामत का खिताब आमतौर पर किस वली अल्लाह को दिया जाता है? जो हाकिम वक्त होता है वली अल्लाह, जो उस दौर का हाकिम है, औलिया कराम उसके बारे में जब भी आपसे जिक्र करेंगे, क्योंकि मुझे से लोग ये पूछे बगैर नहीं रहते कि फला आदमी अगर कोई मुझे वली अल्लाह मिल जाएगा तो पहला सवाल ये होगा जो मैं उनसे करूंगा कि फला आदमी वली अल्लाह है कि नहीं, फला आदमी किस मकाम पर फाइज है। तो जब उनसे ऐसा कोई सवाल किया जाएगा तो वो फिर ऐसे वली अल्लाह के बारे में जो उस वक्त बतौर हाकिम काम कर रहा है तो उसके बारे में कह देंगे कि वो तो बादशाह है अपने वक्त का। एक अगला सवाल है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी महफिल में औलिया अल्लाह दीनी या रूहानी अमूर से मुताल्लिक कोई सवाल पूछ सकते हैं? यहां अक्सर जिक्र होता है कि जब आप अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते हैं तो अदब का तकाजा यह है कि हम अपने लब सी कर जाएं, अपने होठों को सी कर जाएं और कान खुले रखें। तो अगर मुर्शिद की महफिल में अदब का तकाजा यह है तो वो महफिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वहां किसकी मजाल के वो जुबान खोल ले अनलेस के उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दरियाफ्त फरमाए। ये सवाल है इनका कि क्या ये सच है कि कुछ औलिया अल्लाह एक दूसरे के लिए कदर जलाली होते हैं? जलाली नहीं होते, फर्क यह है कि देखिए, आपको अगर एक तांगे वाला रेड़ी रेड़ा चलाने वाला कोई और ऐसा आदमी आपको गाली दे दे तो आप मुस्कुरा देंगे, और अगर हो सका तो शायद उसको कोई कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर कर दें। लेकिन अगर आपके बराबर का कोई आदमी सिर्फ आपको वे भी कहेगा तो आप पलट के उसको डांट देंगे। वजह यह है कि जिसने आपको बुरा भला कहा उसके बारे में आपको पता है कि इसके पास तालीम नहीं है, इसकी तरबियत वैसी नहीं हुई, इसको पता ही नहीं है कि मुझे कह क्या रहा है, तो इसलिए आप उसकी बात का बुरा नहीं मनाते, उसकी सख्त बात के जवाब में मुस्कुरा देते हैं, और अगर अल्लाह ने हौसला दिया है तो उसको आप एंटरटेन कर देते हैं। लेकिन आपके बराबर के आदमी के बारे में आपको पता है कि यह तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, इसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से अल्फाज जुबान से निकालने हैं, कौन से अल्फाज नहीं निकालने। तो ऐसे आदमी की बात का आप बड़ी सख्ती से नोटिस लेते हैं। जब दो औलिया इकराम मिलेंगे आपस में, तो अगर एक आदमी कोई मयार के बरखिलाफ कोई बात करेगा, मयार से हटकर बात करेगा, तो दूसरा वली अल्लाह उसे बर्दाश्त नहीं करता, सख्ती से डांट देगा वो, इसलिए कि अगर ये काम नहीं करेगा तो औलिया इकराम जिन्होंने दूसरों की रहनुमाई करनी है वही अगर ऐसी बात करेंगे तो रहनुमाई के लायक रह नहीं जाएंगे, इसलिए वो उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि देखने वाला ऐसा लगता है कि जलाली हैं दूसरे के लिए। ऐसी बात नहीं होती। एक और सवाल है कि क्या वलायत में हर वली अल्लाह की रूहानी प्रमोशन का जश्न मनाया जाता है या किसी खास प्रमोशन ही की सेलिब्रेशन की जाती है? ये खास प्रमोशंस होती हैं जिसको सेलिब्रेट करेंगे दूसरे, वरना रूटीन में प्रमोशंस होती रहती हैं। इसी सवाल का अगला हिस्सा उन्होंने लिखा है कि क्या ये जश्न रूहानी तौर पर मनाया जाता है या फिजिकली? ये डिपेंड करता है, बाज़ुकात फिजिकली भी होता है और साथ साथ रूहानी तौर पर भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मनाया कहाँ जा रहा है, कौन मना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसी सवाल का अगला हिस्सा उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या इस जश्न में तमाम मरहूम औलिया अल्लाह और हयात औलिया अल्लाह भी मौजूद होते हैं? जरूरी नहीं है। इसी सवाल का तीसरा हिस्सा यह है कि यह जश्न अमूमन किस मकाम पर मनाया जाता है और इसका एहतमाम कौन करता है? मैंने शायद किसी सवाल के जवाब में पहले भी अर्ज किया था कि 73-74 के जमाने में मोइन अख्तर ने टीवी पर यह जोक सुनाया था कि जो एक गरीब आदमी बाजार से तरबूज खरीद लाया, काटा तो जिन बरामद हो गया था, तो जिन ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या दूं मैं, तो उस गरीब आदमी ने सोच सोच के फैसला किया कि इससे मकान बनवा लिया जाए, क्योंकि मकान ऐसा है जो सारी उम्र कमा के भी मैं बना नहीं पाऊंगा। तो उसने जिन से कहा था कि एक खूबसूरत सा महल मेरे लिए बना लो, تو جن نے فوراً جواب دیا کہ پاگل ہوئے ہو کیا، اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو میں تربوز میں رہتا. تو بھائی اگر یہ سارا مجھے پتا ہوتا کہ جشن کس مقام پر منایا جاتا ہے تو میں اس جشن میں جا کے کوئی کھانا نہ کھا تھا بہتر. اگلے اس سوال کا اگلا حصہ، کیا اس جشن میں پرموٹ ہونے والے ولی اللہ کے خلیفہ اور مریدین بھی شرکت کرتے ہیں؟ شرکت کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کا جواب کیا دوں، مجھے پتا ہو تو میں تو ابھی ان ولی اللہ کی شاگردی کر لوں جن کی پروموشن ہونے والی ہے، تاکہ میں تو انجوائے کروں اس کو. جس ولی اللہ کی پرموشن کا جشن منایا جاتا ہے وہ جس کو ساتھ لے جانا چاہے اس کی پرمیشن لیتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان لوگوں کو اس جشن میں. تو ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام امور جو اولیاء کرام کے براہ راست تصرف سے باہر ہوں ان کی بجاوری کے لیے ہر شہر میں فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت حاضر رہتی ہے اور یہ فرشتے انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے، رب کا اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. فرشتے رب تعالیٰ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے تو بعض اوقات کچھ معاملات میں دنیاوی یا مادی اسباب کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. تو اولیاء کرام اس وقت یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، تو یہ الٹا ہے معاملہ، فرشتے نہیں موجود رہتے، اولیاء کرام اس عالم الاسباب میں مادی اسباب کے سلسلے میں ڈیوٹی سر انجام دے دیتے ہیں. یہ ادر وے راؤنڈ ہے بات. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں نیک جنات بھی حاضر ہوتے ہیں؟ کیا جنات اولیاء اللہ بھی صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ جنات ایسی ڈیوٹیز پر فائز نہیں ہوتے اور نہ اس محفل میں ایز ولی اللہ شامل ہوتے ہیں. اصل میں یہ سوال انہوں نے کچھ ایسے لکھ دیے جس کے جوابات دینا خاصا اور دشوار ہے، کہ وہ کچھ ایسے معاملات ہیں ان کے جن کے بارے میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو. کیا یہ سچ ہے کہ رات کا آخری حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص کے انعقاد کا وقت ہے؟ اس جواب کو، اس سوال کے جواب پر اصرار نہ کیجیے، اس کو رہنے دیجیے اسی طرح. اگلا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ولی اللہ کشف کی حالت میں کسی ایسی شے کا مشاہدہ کرے جس کی کتاب نہ لا سکے اور نتیجہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حالت کشف میں ایسی چیز دیکھ لی جس کی تجلی کی تاب نہیں بلا پایا اور ہوش و حواس کھو دیے؟ یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ کسی چیز کو دیکھ کے علم کا زور اس قدر ہو گیا कि उस इल्म को वो सहार नहीं पाया और होशोहवास खो दिए, ये हो जाता है। लेकिन ऐसे मकाम पर जो मुर्शद हैं, अगर वो कामिल हैं, जो कि होते हैं, वरना मुर्शद हो नहीं सकते अगर वो कामिल ना हो, तो वो संभाल लेते हैं। वो इंसान को उस हद तक जाने नहीं देते जहां वो होशहवास खो दे, क्योंकि वलायत में सालिक फजीलत रखता है मजजूब पर। जो लोग प्रॉपर सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं और उनके मुर्शिद उनकी तरबियत करते हैं, उनको इल्म देते हैं, तो पहली बात तो ये है कि मुर्शिद बड़ी मैयर्ड डोज में इल्म देते हैं, कि उस इल्म के जरिए से वो एक यकलख्त आगे इतना न चला जाए कि वहां उस मकाम की तजल्ली के किताब न ला सके और होश आवाज खो दे। तो मुर्शिद वहां तक जाने नहीं देते, उससे पीछे रोके रखते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जो रूहानी तरक्की होती है शागिर्द की, तो वो आगे उसको बढ़ने देते हैं। तो इस तरह से होश आवाज खो नहीं पाता, बल्कि जिन खुश नसीबों के मुर्शिद इतने कामिल हों कि वो अपने शागिर्द की तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि सुन्नत के ऐन मुताबिक उनका शागिर्द दुनियादारों में बैठे तो दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार हो, वो दिखाई दे, दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार दिखाई दे, और दीनदारों में बैठे तो दीनदारों से ज्यादा दीनदार दिखाई दे, वो ऐसी तरबियत कर देते हैं। पढ़ाइयाँ और औराद व वज़ाइफ किसी वली अल्लाह को जमाली से जलाली क्यों बना देती हैं? रूह की केमिस्ट्री इतनी तब्दील क्यों हो जाती है? क्या कोई वली अल्लाह जलाली न होना चाहें, जमाली ही रहना चाहें, तो क्या उनका कोई अख्तियार होता है? क्योंकि खल्के खुदा अमूमन जमाली बुजुर्गों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। ये डिपेंड करता है कि कोई साहिब इल्म किस किस्म के वज़ाइफ पढ़ रहा है, तो उससे जलाल अगर पैदा होता है ज्यादा, और अगर उसके मुर्शिद उन्हें लगाम न दें तो वो जलाली हो जाएंगे फिर। और बाज़कार मजाज का उसमें दखल होता है बहुत, कि अगर उनका अपना मजाज ही जलाली है तो जूं जूं वो वज़ाइफ पढ़ेंगे तो उनके जलाल में इजाफा होता जाएगा, लेकिन फिर भी उनके मुर्शिद कोशिश करेंगे कि उनको एक हद से आगे न निकलने दें। रूहानी तरक्की और तरबियत में असल में मुर्शिद ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने शागिर्द को कि ये किस राह पर जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि मुर्शिद बाज़ुका डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं कि डांट दिया कि क्या कर रहा हूं। बाज़ुकात मुर्शिद ज्यादा मरुबत वाले होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो वो डायरेक्टली कहने के बजाय या तो आपको किस्सा सुना देंगे या इनडायरेक्टली कोई बात कह देंगे, किसी को सुना आपको रहे होंगे, तो सुनने वाला शागिर्द जो है चूंकि मुर्शिद को पहचानता है तो वो फौरन भांप जाएगा ये बात कहीं किसी और को गई है, लेकिन कहा मुझे जा रहा है। मैंने यहां किस्सा बयान किया था कि बहुत पुरानी बात है, मैं 70s की बात कर रहा हूं, तो सिगरेट वगैरह से शगफ नहीं था मुझे कभी भी, लेकिन वो हमारे एक कोलीग थे, वो जब कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाते थे तो भुट्टो साहब का जमाना था, तो भुट्टो साहब के कपड़े, उनके जूते, उनकी कफलिंक्स फैशन में आ गई थी, और इसी तरह सिगार जो भुट्टो साहब पीते थे, तो वो एक आध सिगार कोई साल में ले आते थे मेरे लिए, तो मैं सिगार ऐसी मजाक में सुलगा के तो बैठा रहता था। मेरे एक दोस्त मुर्शिद साहब के पास गए, तो वो सिगरेट कसरत से पीते थे, तो मुर्शिद साहब बातें उनसे कर रहे थे कि मेरे दोस्त हैं इसलिए ज्यादा तो जो उनको मिल रही थी, तो उनको फरमाया उन्होंने कि देखो ये जो सिगरेट पीते हैं आप, इससे रूहानी परवाज में रुकावट आती है। सिगरेट पीने वाला आदमी एक हद से आगे नहीं परवाज कर पाता, तो चाहे एक आध सिगरेट या सिगार साल भर में पिए, फिर भी कोताही जरूर आएगी। वो साहब तो रूहानी राह पर नहीं थे, वो तो मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं समझ गया कि ये कहा मुझे गया है कि साल भर में, दो साल में अगर एक सिगार भी पियोगे तो रुकावट जरूर आएगी। तो मरवत वाले मुर्शिद फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, समझाते हैं वो, तो इसमें रोल ज्यादा होता है। इसी तरह हमारे सिलसिले साबरिया में अक्सर बेशतर आपको लोग ये कहानी सुनाते हुए मिलेंगे कि जब मैं सो के उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं कुछ पढ़ रहा होता हूं, और वो ऐसी पढ़ाई होती है या ऐसी सूरतें होती हैं जो मैंने कभी तस्वीर की नहीं होती जागते हालत में, लेकिन सोते हुए उठता हूं तो वो पढ़ रहा होता हूं। ये असल में मुर्शिद मेहनत कर रहे होते हैं कि आपको सोते में पढ़वाते हैं वो, कि आप एक मकाम पर चले जाए। तो मुर्शिद हमारे यहां ज्यादा मेहनत करते हैं, शागिर्दैश करते हैं, तो वो और बात है कि मुर्शिद इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझ जैसे नालायक शागिर्द को बेचारे उसका कुछ बिगाड़ पाते ही नहीं है बिल्कुल, वो वहीं के वहीं रहते हैं, जमीन जुम्मत न जुम्मत गुन मोहम्मद। लेकिन कुछ मुर्शिद बहुत मेहनत करते हैं कि सोते में पढ़ाते हैं शागिर्द को। तो बात जलाली की हो रही थी, तो मुर्शिद मॉनिटर करेंगे, उन्हें जलाली नहीं बनने पाएंगे, लेकिन अगर फितरत में जलाल है तो बहुत बढ़ जाएगा। तो यूं कुछ औलिया कराम आपको जलाली महसूस होते हैं। वली अल्लाह याद रखिए कि किसी अल्लाह के किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं देते कभी, इसलिए कि उसकी इजाजत ही नहीं है। तो अगर वो आपके साथ जलाली रवैया रखते हैं तो इत्मीनान रखिए, वो रवैया यहां से ऊपर ऊपर है, यहां नहीं आता वो रवैया, यहां पे वो नरमी ही होगी, मोहब्बत ही होगी, लेकिन आपको एक खास ट्रैक पे रखने के लिए वो ऐसा जाहिर कर देते हैं जैसे वो गुस्से में आए हैं। होता नहीं गुस्सा, वो दिल में नहीं होता उनके, क्योंकि वली अल्लाह बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, कानून जाब्ते असूल इनका सख्त पाबंद होता है, तो अपने पास आने वालों से तवक्को रखता है कि वो उसी असूल को, कानून को, जाब्ते को, नज्म को फॉलो करेंगे उस अंदाज में जिस अंदाज में किया जाना चाहिए। तो बाज़कात इस्लाह करने के लिए वो जलाल का इजहार कर देते हैं। खल्क खुदा چاہے گی کہ ہر وقت اللہ کے فقیر سے ملے، لیکن اس کو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے روزگار کے معاملات ہیں، اس کا سوشل سرکل ہے، اسے سب کو ٹائم دینا ہے بانٹ کے. اس کے بھی دن کے 24 گھنٹے ہی ہیں آپ کی طرح، اس کے دن کے 240 گھنٹے نہیں بنیں گے. تو وہ جب تقسیم کرتا ہے ٹائم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، تو خلق خدا کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم وہ مختص کرتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ دے نہیں پائے گا ٹائم. تو خلق خدا تو نہیں دیکھتی، وہ تو اس کے عبادت کے ٹائم پر بھی اس کے پاس آئے گی، اس کی فیملی کے ٹائم پر بھی آئے گی، اس کے روزگار کے ٹائم پر بھی آئے گی. تو وہ پھر ایک ظاہراً سختی کا اظہار کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس ضابطے میں لانے کی کوشش وہ کرتا ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر اگلی اتوار بشرط زندگی، اس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.